श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ృష్ణగద్వర్ణం పరం బ్రహ్మరాజీ సౌందర్యసారసర్వస్వం వందే నందాదిగం మహో సపన్న పారిజాతాయ తోత్రవేత్రైకపాణయే జ్ఞానముద్రాయ కృష్ణాయ సీతామృగదూహే నమః వసుదేవ సుతం దేవం కంసప్రాణోర్మర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం వంశీ విభూషితకరాన్నవీరరాభాత్ పీతాంబరారుణబింబఫలాధరుష్టాత్ పూర్ణేందుసుందరముఖాదరవిందనేత్రాత్ కృష్ణాత్ పరం కిమపి తత్త్వమహం న జానే. హరి ఓం నమో పరమాత్మని నమస్తే. శ్రీ గురు
एक बात बताएं, उस तरफ आप ध्यान दें, उस तरफ विशेषता से ख्याल करें, आप एक दृष्टिपात करें. जैसे खेत में जाने वाले के लिए भोजन आदि का प्रबंध घर वाले करते हैं, वो तो केवल खेती करे बस. भोजन के वक्त वह भाता पहुंचाएगा, उसको भाता कहते हैं, सरकारी भत्ता कहते हैं, मारवाड़ में भाता कहते हैं. वो वक्त पर भाता पहुंचाएगा, मानो खाने पीने का प्रबंध घर वाले करते हैं, उसको तो केवल खेती करना है. फिर कहता हूं आप ध्यान दें, आप यहां आए हैं केवल अपना उद्धार करने के लिए. तो भोजन है, वस्त्र है, जल है, मकान है, आदि का प्रबंध भगवान की तरफ से है. अब यहां जो कुछ करो वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, चाहे वो सांसारिक काम हो, चाहे वो शास्त्रीय धार्मिक काम हो, चाहे शारीरिक काम हो. मानो कुटुंब के लिए करना किया जाए, अपने भरण पोषण के लिए किया जाए, अथवा शास्त्रीय काम किया जाए, वो सबका सब काम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए. भगवद गीता माया है, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. यत करोषि ये बहुत व्यापक पद है. खाना पीना सोना जगना बैठना उठना बातचीत करना लेना देना, व्यवहार मात्र में जो कुछ तू करता है वो तू मेरे अर्पण कर दे. और यदि अश्नासी करके कहा, तू खाता पीता है, कपड़े पहनता है, जिन मकानों में रहता है, आराम से सोता है, जो शरीर के निर्वाह के लिए इतने काम करता है, वो सब भी मेरे अर्पण कर. यज्जुहोषि ददासि यत तपसि, ये तीन क्रियाएं, यज्ञ दान तप, ये तीन गीता में कहे हुए पारमार्थिक काम हैं. जो शास्त्रीय काम करो तो वो भी मेरे अर्पण कर दो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, होम करो, जो कुछ करो वो भी मेरे अर्पण कर दो, सब कुछ मेरी प्रसन्नता के लिए करो। व्यापार करो तो मेरी प्रसन्नता के लिए, गाय रखो तो मेरी प्रसन्नता के लिए, खेती करो तो मेरी प्रसन्नता के लिए, नौकरी करो तो मेरी प्रसन्नता के लिए, दलाली करो तो मेरी प्रसन्नता के लिए, मतलब तुम जीविका के लिए जो कुछ काम करते हो वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो। जीविका स्वतः ही उसमें सिद्ध हो जाएगी। करो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। कल मैंने ये बात कही थी कि भगवान के लिए करोगे तो काम स्वयं शुद्ध हो जाएगा स्वाभाविक ही। उस समय मैंने एक बात कही थी कि माता श्री कौशल्या जी जब ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए पकवान बनाती है तो पूजा हेत कीन स्नान, ठाकुर जी की पूजा के लिए अब रसोई बनानी है तो माता जी ने पहले स्नान किया। ठाकुर जी की तरफ विचार होते ही पवित्रता आ ही जाती, वो जान करे तो पवित्रता आ जाए और अनजान पने करे तो पवित्रता आ जाए, उसमें शुद्धि स्वाभाविक आ जाती, क्योंकि ध्येय उसका शुद्ध है। पवित्राणाम पवित्रो यम मंगलानां च मंगलम, सब पवित्रों में पवित्र भगवान है, सब मंगलों में मंगल भगवान है। इसराय मंगलाय तनु हरि, मंगल का स्थान है परमात्मा। उस तरफ वृत्ति होते ही आप में शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता, नैतिकता, धार्मिकता सब आ जाएगी स्वाभाविक ही, क्योंकि धर्मस्य प्रभु अच्युत, धर्म के प्रभु मालिक भगवान है। तो भगवान की तरफ वृत्ति करने से धर्म का, पवित्रता का अनुष्ठान करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक आप में पवित्रता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी। ये जो पाप होते हैं ये पैसे की तरफ दृष्टि होने से होते हैं, भोगों की तरफ दृष्टि होने से होते हैं। सुख भोग लें, पैसा संग्रह कर लें, ये दो बातें मुख्य रहती है। ये मुख्य जहां रहती है वहां पापों से बच नहीं सकेगा, कितना ही सावधान रहे तो जब संग्रह की भोग की इच्छा मन में होगी तो उसके आचरण पवित्र नहीं होंगे, अपवित्रता आ जाएगी, क्योंकि मूल आपके अपवित्रता का ही उद्देश्य है। भोग भोगना है ये मनुष्य का काम नहीं है, यह हितानुकारक फल है विषय अनुभव, ये भोग योनि है ही नहीं। सुख भोग योनि देवताओं की है, महान भयंकर दुख भोगने के लिए नरकों के ईव है, और साधारण दुख भोगने के लिए कीट पतंग सांप बिच्छू आदि, ये योनि है 84 का। मनुष्य शरीर कर्मों का फल भोग के लिए नहीं है। सज्जनों, शास्त्रों के देखने से, बहुत सी कथा सुनने से ऐसे मालूम होता है कि मनुष्य शरीर में नया काम परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना है और पुराने कर्मों का फल है वो भोगने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा है तत्तेरुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्मकृतम पिपाकम, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता हुआ। परंतु संतों की दृष्टि और है, वे भोगियों ने नहीं कहते इसमें जो सुख आता है दुख आता है अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, सब भगवान का भजन है, सब केवल भगवान की सेवा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। सुख भोगे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, दुख भोगे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने तो भगवान की सेवा करनी। अब भगवान जाई बिद राखे राम, ताई बिद रही है कि सीताराम 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 कही। जैसे ठाकुर जी रखे वैसे रहेंगे प्रसन्नता से, तो आपके सुख दुख भोगने के लिए ये भाता आ गया है, ये भगवान की तरफ से प्रबंध हो गया है। तो इसको कर्मों का काटना तो शुद्ध हो जाएगा। आप कुछ भी भावना नहीं करेंगे तो भी कर्मों का फल दे करके कर्म तो नष्ट हो जाएंगे। पुण्य कर्म आपके अनुकूल पदार्थ दे करके नष्ट हो जाएंगे, पाप कर्म आपके प्रतिकूल परिस्थिति दे करके नष्ट हो जाएंगे। ये रहने वाला नहीं है, क्योंकि पाप और पुण्य आरंभ किए जाते हैं और समाप्त होते हैं, तो इनका फल भी आएगा और नष्ट हो जाएगा। फल नित्य कैसे होगा, जब क्रिया मात्र ही अनित्य है तो उसका फल नित्य कैसे रहेगा। ना सदा किसी के सुख रहता, ना सदा किसी के दुख रहता। सुख और दुख दोनों आते हैं, किसी में सुख विशेष किसी में दुख विशेष, ऐसा आता रहता। अनिष्टम इष्टम विष्पंचन त्रिविधम कर्मण फलम, अनिष्ट फल आता है, इष्ट फल आता है, मिश्रित फल, कुछ अंश सुख का कुछ अंश दुख का, ऐसे फल आता है। तो वो फल भोग है, आप कुछ भी नहीं करोगे तो फल भोग दे करके कर्म तो नष्ट हो जाएंगे। परंतु क्या ही बढ़िया चीज हो कि ये सब भगवान के अर्पण कर दू। सुख आवे तो ही भगवान की प्रसन्नता के लिए, दुख आवे तो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, सुख दुख मिला हुआ आवे तो ही भगवान की प्रसन्नता के लिए, केवल भगवान के लिए। सज्जनों, मैंने बहुत सी पुस्तकें देखी, धार्मिक पारमार्थिक पुस्तकें देखी, उन पुस्तकों में आता है कि भाई अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना है, ये बात बहुत जगह आती है। परंतु मैंने संतों की बातें विलक्षण सुनी और मैंने संतों की वाणी में पढ़ा है, यहां जो कुछ है वो सब कुछ ही साधन सामग्री है। सुख आवे वो भी साधन सामग्री है, दुख आता है वो भी साधन सामग्री है, परमात्मा की प्राप्ति की साधन सामग्री। तो भगवान के लिए करते हैं हम तो काम करें, वे कर्म होते हैं, कर्मों का फल अगर ही होता है, वो अच्छे काम करें और फल की इच्छा का त्याग कर दें तो निष्काम भाव से करने से अंतकरण की शुद्धि होती है। परंतु पुराने कर्मों का जो फल आकर के प्राप्त होता है, वो फल भी भगवान के अर्पण किया जाए तो उसका फल भी परमात्मा की प्राप्ति। थोड़ा आप ख्याल करें, कर्म करना वो भगवान के लिए करें, नहीं फल भोग भी भगवान की प्राप्ति के लिए करें। बुखार आ गया तो भगवान ने कृपा कर दी, वो भगवान के अर्पण कर दो, भगवान को कह दो कि नाथ आपका भेजा ये तप है, भगवान का भेजा हुआ तप, आप मन धरंत तप करते हैं, वो तप इतना बढ़िया नहीं है जो अपने मन धरंत, और हम चाहते नहीं और बुखार आया तो ये भगवान का भेजा हुआ तप है। तप में शरीर तपता है, बैसाख के महीने ऊपर घाम तप रहा है, चारों तरफ अग्नि सुलगाकर बीच में बैठ जाए तो शरीर तो तपेगा, परंतु उसको तप मानते हैं, तपस्या करते हैं, परंतु करते हैं अपने मर घरंदता। तो बुखार आवे तो जलन होती है, ये भगवान का भेजा हुआ तप है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। तो पापों का फल तो मार्ग में ही नष्ट हो जाएगा और तपस्या का फल होगा। उपनिषद में आवे बृहदारण्यक उपनिषद के 11वें ब्राह्मण में वर्णन आया है कि बीमारी आ जाए उसको तप समझे, भगवान की तप है, और मर जाए तो भगवान की तरफ जा रहे हैं और कुटुंबी साथ में लेकर के चले तो ये भगवान की तरफ पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, और दाह क्रिया हो जाए तो हम भगवान में लीन हो रहे हैं। ये कर्मों का फल नहीं, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं का और कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। तो भावना के अनुसार फल होता है तो भावना में कमी क्यों लाए? अरे मन के लड्डू बनावे उनमें खांड क्यों कम क्यों डाले? घर का खर्च तो ही लगता है, खांड भी खूब डाले और घी भी इतना जो टपकता है, ऐसे लड्डू बनाओ तो भावना में क्यों क्यों जावे? भगवान का दिया होता है, वाह वाह महाराज वाह वाह बड़ी कृपा करी, जोर से पुकार आ रहा है और मन में प्रसन्नता हो रही है, वाह वाह वाह, अपमान हो रहा है और प्रसन्नता हो रही है, निंदा हो रही है और प्रसन्नता हो रही है, घाटा लगता है आनंद होता है, घर में कोई मर जाता है आनंद होता है, किस बात का? कि भगवान ने मेरे को अपना लिया। देखो अनुकूल तो हरेक कर सकता है, प्रतिकूल तो अपना ही कर सकता है, अपना खास होता है वो प्रतिकूल करने में संकोच नहीं करता, दूसरे का तो मरा उपकार कर सके अपकार नहीं कर सके, अपकार करने का अधिकार नहीं है, उपकार करने का अधिकार है। मैंने बहुत बार दृष्टांत दिया है कि बच्चे खेलते हैं, किसी माँ के हृदय में बालकों को देख करके प्रेम उमड़े तो वो लड्डू सबको दे सकती है, मिठाई सबको दे सकती है, परंतु उद्दंडता करे शरारत करे तो थप्पड़ सबको नहीं दे सकती, थप्पड़ जाएगी अपने बच्चे के लिए अपने बारे में, क्यों रे ऐसी क्यों करता? सुधार के लिए, सुधार तो औरों का भी होता है पर तो औरों का ऐसे सुधार करने का अधिकार नहीं है। तो ठाकुर जी हमारे भेज रहे, हमारे ठाकुर जी को अधिकार है पूरा कि हमारे बालक भगवान के हैं, तो हमारे मन के प्रतिकूल ठाकुर जी भेजते हैं वो शुद्ध करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए, हमारे की हमारी उद्दंडता छुड़ाकर और निर्मल बनाने के लिए मिलते, तो उसमें हो जाएगा वाह वाह वाह। अरे भाई प्रतिकूलता में इतना दुख नहीं है जितना भगवान ने हमारे को अपना समझ लिया, उसमें कितना सुख है। हमारे बिना पूछे बिना सम्मति लिए प्रतिकूल परिस्थिति भेज दी तो भगवान ने अपना लिया ना मेरे को, अब भगवान ने अपना लिया इसमें जो सुख है उसके सामने दुख इतना कितना है। इतनी बड़ी बात हुई, भगवान ने अपना बना लिया, वो अपना बना लिया इस तरफ दृष्टि होनी चाहिए, उस भगवान गर्पण हो गया, फिर वो भगवान गर्पण हो गया, भगवान ने कृपा दी, तो भगवान ने तप भेजा है। इससे भी एक ऊंची बात है और बढ़िया, वासुदेव सर्वम, तो बीमारी आ जाए बुखार आ जाए वो उठ जाएगा, साक्षात भगवान आए परमात्मा आए बुखार उसे आए और मिल रहे हैं, कण कण में मिल रहे हैं, हड्डियों में चमड़े में शरीर में सब जगह मिल रहे हैं, वाह प्रभु वाह वाह वाह, अनेक रूप रूप आए, भगवान के रूप अनेक होते हैं, ये भगवान का रूप है, भगवान मिल रहे हैं, आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है, कितना सुख है, भगवान मिल रहे हैं, साक्षात भगवान का स्वरूप है, घाटा आवे तो, किसी की मृत्यु हो जाए तो, बीमारी आवे तो, अपमान हो तो, निंदा हो तो, जो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आती है, भगवान आए, इस रूप से भगवान आए, बहुत की बात है। हाँ महाराज, आपकी मर्जी आवे जिस रूप से आओ, मैं आपको पहचान लूंगा, आपकी कृपा से मैं आपको पहचान लूंगा। ये ठाकुर जी आए इस रूप से, ऐसे ठाकुर जी पे छिप नहीं सकते, ऐसे ठाकुर जी को पहचानने वाला है उसके सामने ठाकुर जी छिप नहीं सकते। हम अनुकूलता चाहते हैं तो अनुकूल सामग्री में छिप जाएंगे और प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान छिप जाएंगे, भगवान नहीं दिखेंगे, और अनुकूल प्रतिकूल दोनों में भगवत बुद्धि होगी तो छिपेंगे किसके पीछे, किसके पीछे छिपेगा बताओ, उनको छिपने के लिए जगह नहीं मिली। मैंने पहचान लिया, मैंने इस रूप से आप बता रहे, वाह 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 वाह, बड़े आनंद की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप तो घाटे के रूप बता रहे हो, आप तो मृत्यु रूप से बता रहे हो, आप तो बुखार रूप से बता रहे हो, वाह वाह, बड़ी कृपा हो गई, बड़ी कृपा हो गई, साक्षात भगवान आए हैं इस रूप में। बोलो, ये दुख होता है उसमें कारण यह है कि हम बीमारी आदि को दुख मानते हैं, इसमें दुख रूप होता है। आनंद माने तो आनंद होगा, कहते दुख आनंद कैसे होगा। बहुत बार मैंने बात कही है, जैसे कोई कांटा गड़ गया और कोई कांटा निकाल है तो गहरा गड़ा हुआ कांटा है उसको लोग एक कांटे से निकालते, निकालते हैं तो खून आने लग जाता है और सिस कर और है तो बहुत पीड़ा हो रही है, छोड़ो ना छोड़ो निकाल। अब पीड़ा को हम कहते हैं कि निकाल और सुई लगाओ, अर्थ क्या हुआ और सुई लगाओ, अर्थ भी बुरी लगती है परंतु देखते हैं कि कांटा निकल रहा। ऐसे सज्जनों, पापों का फल मानो तो भी कांटा निकलता है, अरे साक्षात भगवान मानो तो, ओहो भगवान इस रूप से पधारे, वाह प्रभु वाह, ऐसे मानो तो। बोलो, इसमें क्या हानि है, केवल भाव बदल दो कि भगवान इस रूप से पधारे, ऐसे और खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंद हो जाए, वाह वाह वाह, बड़ा शुक्र भगवान पधारे हैं, अनेक रूपों से भगवान आए। तो फिर एक प्रश्न होता है कि रोग आ जाए तो फिर दवाई नहीं लेनी चाहिए, तो भगवान आए हैं रोग रूप से, उनको कहे तुम चले जाओ यहां से, तो भगवान को निकालना नहीं चाहिए। बड़बड़ ठीक है, भगवान को निकालना तो होगा, तो फिर दवाई नहीं लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं मत लो, पर दवाई ले तो कैसा लें कि भोग लगावे ठाकुर जी की, बुखार रूपी ठाकुर जी के इस भोजन का भोग लगता है, उसकी जो दवाई है शुद्ध आयुर्वेद वो दो आप लो, ऐसे भगवान का अर्पण करो और भोजन करो। आप विराजमान होकर के भोजन करें तो अच्छी बात, और आप भोजन करके चले जाएं तो आपकी मर्जी महाराज, हम तो आपको भोजन कराएंगे, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ये बात है कि पित्तज है, कफज है, द्वंद्वज है, सुनने पात है, क्या है, जैसा कहते उनमें क्या देना चाहिए, ये देना चाहिए सर, वो ही अपने ध्यान, वही ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, और वो बुखार नहीं उतरे तो भोग लगाएंगे हम तो, और उतर जाए तो लगाएंगे। एक जगह की बात है कि ठाकुर जी के ऐसे भोग लगावे तो फिर तो बुखार चला जाएगा, तो मैंने कहा भैया देखो, हम तुम्हारे घर पर आए हैं भिक्षा के लिए, और आपके मन में हो कि भिक्षा देंगे तो ये चले जाएंगे, तो भिक्षा नहीं दोगे, भिक्षा देने पर चले जाएंगे तो भिक्षा मत दो, ये होता है कि भिक्षा देंगे तो ले जाओ चाहे यहां बैठ कर पा लो। तो ठाकुर जी बुखार रूप से आए तो महाराज यहां विराज कर पाओ आपकी अर्पण, और चले जाए तो भिक्षा दे दी, भोग लगा दिए, अब घर में जाते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम तो ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। हम भावना रखेंगे ये दूर हो जाए, ये सकाम भाव, निष्काम भाव से करो। तो निष्काम भाव क्या, रोग आवे जा सिद्धि सिद्धियों सुनो भूत असम तुम लोग होते, सिद्धि असिद्धि में सम रहे, बुखार चला जाए तो आनंद, न जाए तो आनंद। अपना तो काम कर्म ही नहीं अधिकार से, माँ फले कदाचन, कर्तव्य कर्म में अधिकार, फलों में कभी नहीं। तो भगवान के भोग लगाओ और प्रसन्न हो जाओ। दूसरा वैद्य कहता है देखो ये दवाई अच्छी, अच्छा हमारा अब ये लगाएंगे, ये कड़वी है दवाई, अब कड़वी हो कैसी से भोग लगाएंगे ठाकुर जी ने। ठाकुर जी के हम अन्नकूट करते हैं तो दाना मेथी का साग भी होता है, करेले का साग भी होता है, रसगुल्ला भी होते, सब सब भोग लगता है ठाकुर जी के। क्या कड़वा भोग नहीं लगता बताओ, क्यों रसगुल्ला ही भोग लगता है। अब ठाकुर जी जिस रूप से आए हैं उस रूप से हम तो भोग लगाएंगे, माना ऐसे कर प्रसन्न हो जाए, मस्त हो जाए। देखो ये भावना है हो, ये तमाशा नहीं है और असंभव नहीं है। एक हमने बात सुनी बिजनौर में, एक कन्हैया भक्त रहते थे, कन्हैया नाम था, बड़े धनी आदमी थे, धनी आदमी थे। तो वहां रात में डाकू आए लूटने के, बंदूक लिए गोली मारे। तो उनको पूछा कि महाराज आप क्या लोग, मन में भाव ठाकुर जी आए, आप इज्जत लोगे कि प्राण लोगे कि धन लोगे, तीन बात पूछी, क्या लेना चाहते। कहते धन, ये चाबी है इसमें इतना इतना धन है, ये तो आपका ही तो है, हम तो रखवाली करते हैं, आप ले जाओ। ठाकुर जी का है लेने वाले आए, नहीं तो रात में क्यों आते, रात में आए हैं तो अपनी चीज लेने के लिए आए। खूब खुला दे दिया, ले आओ मेरा, ले गए। सुबह पता लगा कि कन्हैया भगत के यहां रात में डाका पड़ा, तो कलेक्टर ने बुलाए और पूछा तुम्हारा डाका पड़ेगा, ना हमारा डाका पड़ेगी, कि रात्रि में आए ले गए, ठाकुर जी आए थे, और ठाकुर जी की वस्तु थी और हमने कह दिया वही ले गए, डाका पीछे डाका नहीं, उनकी वस्तु यहां रखी रहती चाहे वो ले जाए कहीं मरे, तुम्हारी मर्जी। प्रसन्नता से देती, कितनी मौत की बात बताओ, रो कर दे तो वो बात, हंस कर दे तो ये बात। देहरादून में एक सज्जन रहते थे, उनकी बात सुनी तो वे ऐसा करते, कोई भी अतिथि आता तो उनको मानते भगवान आए, और कमरे बनाए हुए अलग अलग, जो चाहे सो भोजन बनाना और उसको भोजन कराना, और जितना दिन रहे ठहरना ठहराना, और जावे तब पूछ ले क्या क्या चीज चाहिए वो दे देना। उनके यहाँ के एक आदमी आया, वो गाड़ी देता तो आया, तो उसको भी ठहरा लिया, और जब मौका पड़े गाड़ी गाड़ी दे, और गया उस दिन फिर गया तो गाड़ी देते दे दे चला गया। उन तो अपनी सेवा की, ठाकुर जी आए, अब मर्जी ऐसा भाई मर्जी ऐसे करे, ठाकुर जी आए ऐसा सेवा किया, तो वो भी ऐसी सेवा करते थे, ठाकुर जी आए जरूर से। इतनी गड़ी आपसे बात नहीं कहते, आप इतनी कहते हैं कि जो मौके पर आ जाए सुख दुख, वो भगवान आए हैं इस रूप से आए हैं भगवान, प्रसन्न हो जाओ, कैसी मौज की बात है। उसके को घाटा नहीं पड़ा, उनके घाटा नहीं पड़ा। ये दो बलदेव दास, एक इसका नाम दूसरा था, 25 गांव थे उनके, अग्रवाल सज्जन थे, 25 गांव थे, 25 गांव थे। तो जब अलग अलग होने लगे तो एक भाई ने कहा भाई 13 गांव तुम ले लो, 12 गांव हमारे को, दूसरा कह नहीं हम तो 12 गांव लेंगे, 13 गांव तुम्हारे को देंगे। लड़ाई हो गई, हम लेंगे हम लेंगे, लड़ाई तो घड़ी घड़ी सुनी होगा, पर तुम लो तो हम लो, इसमें लड़ाई हो, लड़ाई हो गई। तो एक पंच लाए गए, पंच को रखा, कहो दस्तखत कर दो, हम जो खैर फैसला करेंगे वो तुम्हें मानना होगा। देखिए साहब, 12 गांव हमारे को दिलाओ तो हम आपको दस्तखत करते हैं कि आपका फैसला हमें स्वीकार, हमें 12 गांव लें, 13 गांव लो तो नहीं, अच्छा 12 गांव देंगे। दूसरे ने कहा कि बोलो भाई, हमारे को पद स्वीकार कर दो, पद स्वीकार तब करें जब हमारे को 12 गांव दिलाओ और 13 गांव हमारे भाई को दिलाओ। आप कहो हाँ ऐसा ही करेंगे, तुम्हारे भाई को दिलाएंगे, ऐसी बात उसी दस्तखत कर। दोनों ने अलग अलग दस्तखत कर दी। अब उन्होंने फैसला किया, तो जाओ भाई 12 गांव की रजिस्ट्री करा लो तुम्हारा, और उसको भी कहा कि 12 गांव की रजिस्ट्री तुम करा, राज्य में 12 गांव की। अब एक गांव बच गया, उसका क्या करे? तो क्या बड़े कौन है? मैं बड़ा हूं। अच्छा ये छोरा, ये तुम्हारा हमारा है, वो कहते हैं हमारा, अच्छी बात है। तो बोलो भाई, आपने तो बंटवारा कर लिया, अब आपने बंटवा कर लिया तो मेरी बात मानो, मेरे को पंच रखा है तो तुमको देंगे 12 गांव, पर मेरी बात एक रखो, मेरा कहना मानो। क्या? कि 13 गांव तुम्हारे को लेना पड़ेगा, 13 गांव तुम्हारे को लेना। तो बाबा कैसे, तू मानो तो सही, 12 ही देंगे तुम्हारे। उन्हें स्वीकार कर लिया। छोटे भाई को कहा कि देखो, अब ये बड़े भाई है तो ये तुम्हारा लड़का है, तुम्हारे भाई जी का है कि नहीं? तो भाई जी का ही है, मतलब हम ही भाई जी के ही, छोटे भाई हम भी उनके लड़का ही है, मेरा लड़का भी उसी को है। तो अपने लड़के को कुछ दे तुम ऐतराज करोगे? हम क्यों ऐतराज करेंगे? तो एक बार इस लड़के के नाम से देते, एक गांव इसके लड़के के नाम से देते। तो छोटे भाई ने 13 गांव चले गए। अब लड़के को मना कैसे करें? लड़का आप ही है बेटा, भाई जी का ही है लड़का, अपने लड़के को चाहे सो दे। ऐसे अगर बंटवारा करवाया बना तो मैं लूं ऐसी लड़ाई कहीं नहीं होती, पर ऐसी लड़ाई भी होती है। दो भाई थे, कलकत्ता की बात है, उनके आपस में होगी लड़ाई। लड़ाई होगी तो और तो सब होगी, एक हाथ में पहनने की मुद्रिका थी, बीटी हीरा गिरा हुआ था, बहुत बामी हीरा। तो पंच ने कहा कि भाई हम पंचायती करें, हमारा कहना मानोगे? तो उनमें ये लड़ाई हुई कि हीरे वाली अंगूठी मेरे को दिलाओ तो आपको दस्तखत कर दें, तुम्हारे को दिलाएंगे। दूसरे देश का क्या थी, ये हीरे वाली अंगूठी हमारे को दिलाओ तो तुम्हारे पंच मान तुम्हारे को दिलाएंगे। तो दोनों ने दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने पर वो अंगूठी अंगूठी आप ले ली, मेरे को दे दो। ये लच्छी राम जी मोरोदिया की बात सुनिए, शेर जी के सत्संग में लच्छी राम जी मोरोदिया थे, उन्होंने ये फैसला किया कि वो हीरे की मुंडी अपने से ले ली और उनको दूजा बंटवारा सब कर दिया और कहा कि देखो मुंडी तुम्हारे को देंगे, पर तुम ऐसे शेख ही मत बगाड़ना कि देखो मुंडी हमने ले ही ली। तो मुद्री से मतलब है, वैसे क्यों, अच्छी बात। उसको कह दे, ऐसा मत कहना कि मोदी हमने ले लिया। सुनार के जाकर उनके समान के समान बढ़िया बढ़िया हीरा लेकर वैसे मोदी बना करके एक एक दे दे, तो मैं वो देते देखो, कभी बताना मत, कहना मत, देखो भाई जी मोदी तो मैंने ले ही ली। और बड़े भाई को कहना, ऐसा मत कहना कि देखो मोदी तो हमने ले ही ली, कहना इतना काम तुम्हारा करोगे वहां करेंगे। दोनों को एक एक चुपचाप रहना, राजी हो गए, ठीक है भाई, वो गए तो मुंदरी हमारे को दे दी, वो गए हमारे को दे दी। कई वर्षों के बाद कहीं विवाह हुआ तो मुंदरी पैर कर निकले दोनों का, तो मुंदरी कि भाई जी ये कहां से लाए, पंचायती में मिली, और तू कहां से लाए, पंचायती में मिली। आज तो ये कैसे हुई, मोरोदिया ने खुद अपनी तरफ से बनाकर वैसे समझे, ये पंचायत ऐसी पंचायत हमने देखी है। श्री गोविंद जी के सामने दो आदमियों के आपस में खटपट होगी व्यापार को लेकर के, तो एक सिबुकसराय जी थे नारमल जी के बेटा, नारमल जी होते हैं गोविंदा जी के मामा, उनका लड़का था सिबुकसराय जी, मेरे देखे हुए हैं वो पंचायती हूँ, उस समय मैं नहीं था वहाँ, मैं पहचानता हूँ। एक दूसरे भाई के ढूंढ के हो गई पंचायत, वो कहते हमारा इतना धन आता, वो कहता हमारा इतना होता है, अधिक से अधिक, वो कहता मेरा है, वो कहते मेरा है। तो शेर जी को रखा पंच, गोविंद गाजी को कर दिया तुम पंचायती को, 10 को ले दे दिए। अब जैसे पंच हुए मुकरू हो गए, तो सुबुसराय जी ने जाकर कहा भाई जी ये बुआ के बेटे भाई होते हैं शेर जी, वो मामा का बेटा होता है, आकर कहा देखो भाई जी मेरी प्रार्थना है आप अधिक उनको देना मेरे को मत देना, आपके पास पंचायत ही आ गई और फिर आधा आधा करो, ऐसा नहीं उनको देना जो को देना उसको, हमारे को नहीं। आग्रह किया पहले एकांत में जाकर कह दिया, कहते ठीक पंचायती करने को बैठे हैं, तो वो विपक्षी था, उसको पूछा था आप कितना धन आता है, लिखा दिया हम बोले इतना है, हम बोले इतना है, इतना है, इतना है, हमारे इतना धन आता है। कहा सुभिक्षा इतने रुपये ला कर दे दे, देखो इतना धन इन्हें हिसाब दिया है, इतना पैसा दे दे, सट उठे लाकर सब कह दे दिया। वो कहता सर इतना हमारे को नहीं होता, आपने लिखाया है ये नहीं लिखाया है तो इतना तो आपको देना पड़ेगा आपका है ये। वो कहते सर इतना हक लगता ही नहीं हमारा, हमने समझा के इतना लिखा था तो कुछ कम करेंगे तो हमारे हमारा तो आ जाएगा, इस बात अधिक लिखा दिया। तो शिवक्षा क्या करें कि महाराज भाई जी आपने जबान से कह दिया मैं तो लूंगा नहीं, हमने तो दे दिया। वो कहते हम लेंगे नहीं, अब लड़ाई हुई, अब क्या करें इसका, वो स्वीकार करे नहीं, वो स्वीकार करे नहीं। अंत में ये बात हुई कि आप ऋषिकेश जाते हो, ये दान पुण्य में आप लगा देना, हम तो दोनों लेंगे नहीं। पंचायत स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपना हक लेंगे अधिक लेंगे नहीं। वो कहते भाई जी ने कह दिया हम तो बात देंगे ही पूरा, कम करेंगे ही नहीं। कलकत्ते से मेरे को बुलाया था बांकुड़ा, शेर जी बांकुड़ा रहते थे। तो ये जो तत्ववेत में टीका लिखी गई है, ये पहले तत्वांग निकला था कल्याण में विशेषांग रूप से, तो उसको पुस्तकाकार करना है। तो मैं था, हरिकृष्ण जी थे और शेर जी, तीन आदमी सुबह जल्दी बैठते थे, संध्या और भोजन के लिए उठते और दिन भर शाम तक संशोधन कर, फिर वो पुस्तकाकार से निकला। तो मैं कलकत्ता रहता था सत्संग के लिए, तो बुला लिया था कि तत्ववेदन लेना। उन दिनों की बात मेरे सामने बात हुई, तो पंचायती वाले आ गए, तो हमारी पंचायती को कहा ठीक है, तो मेरे को कहा स्वामी आप जाओ कलकत्ता सत्संग कराओ, अब हमारे काम स्थगित रहेगा, फिर आपको बुला लेंगे, फिर अपने संशोधन करेंगे। मेरे को भेज दिया तो पंचायत में, तो मैं उन दिन वहां था, वहां की बात थी। तो कहा भाई दूध, तो दूध शाम के वक्त में थोड़ा आया था, वो सामने दुआ एक गाय का दूध ही शेर जी पीते थे, उनकी गृहणी हो गई थी, संग्रहणी में दूध का कल्प किया, अगर दूध का न ले तो उनकी बीमारी चेत हो जाए। तो शाम को दूध था कम, अब हम दूध तो वो पिया, इनको बाजार का लाकर पिला रहे ठीक नहीं, तो शेर जी ने दूध पिया नहीं, मैं वही था पिया नहीं, उनको पाली उन्होंने पिला। फिर वहां चला गया, फिर हुई पंचायती, पंचायती हुई उसमें कहा देखो साहब हम तो इतना रुपया लेंगे, हम तो कम लेंगे ही नहीं। अच्छा तुम्हारे को देंगे, उन्होंने कहा सर हम तो इतना ही देंगे, ज्यादा ज्यादा देंगे ही नहीं, इनका हक नहीं होता है, हम ज्यादा कैसे देंगे। अच्छी बात है, तो फैसला हुआ उनसे उतने ही रुपये ले लिए, ले करके अपने रूप में मिलाकर दे दिए उनको। ये मेरे सामने की हुई बात है। वो कहते हम इतना लेंगे, उनको पूरा दे दिया गया, आप रखो। और वो हम तो इतना ही देंगे, उतना दे दे दिया। दोनों राजी हो गए। वो तो समझा कि हमने अधिक दिया ही नहीं, वो कहते हमने अधिक ले ही लिया। ये फैसला हो गया। मैंने पूछा, मैं आया पीछे तो पूछा क्या हो गया, ऐसा हमने किया है, हो गया। इसके बाद एक दो वर्ष के बाद फिर उनको पता लगा कि ये गोविंदगा जी ने घर से दिया है। तो फिर मेरे को गोविंदगा जी के भाई थे हरिकृष्ण जी, उन्होंने कहा स्वामी जी वो रुपये हमारे आ गए, हमने दिए थे पर वो दे गए, तुम्हारे रुपये हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे रुपये आ गए। तो रुपये भी गए नहीं, फैसला भी हो गया। पर तो बात ये है कि राजी हो जाएगी जरूर। सज्जनों सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रतो तो कल्याण हो जाए। हित करने में क्या जोर आया बताओ, अपने जो हिस्से की चीज है वो तो अपने पास आवेगी, तो आवेगी उसमें से दूसरों का हित करो। सेवा करने के लिए है यहाँ, यही तनु कर विषय है भाई। सुख भोग इसका फल है ही नहीं मनुष्य शरीर का, मनुष्य शरीर का हित करने का काम है। तो ऐसे ऐसे पुरुष भी संसार में हुए, ऐसे पंचायती करने वाले हुए, यही मानेगा हमारा है ही नहीं, ये तो सब इनका ही है। ऐसे अगर आप मानो तो कितनी सुगमता से कल्याण हो जाए। और सज्जनों पहली बात कही वो याद करो, अपने यहां निर्वाह के लिए तो पहले रचना हुई है, पीछे शरीर मिला है। अपनी अपनी माँ का दूध पीकर ये भाई और बहन सब पले। आपने हमने कोई दूध के लिए उद्योग किया था क्या, कोई पुरुषार्थ किया था कि माँ के दूध मिल जाए? मुफ्त मिला था ना, तो वो मुफ्त मिला तो दांत नहीं, जब दूध दिया अब दांत दिए कहा, अन्न न दे है, दांत नहीं था भगवान ने दूध दिया, अब दांत दे दिया तो अन्न नहीं देंगे, क्यों दिए दांत बताओ? अगर अन्न नहीं देना हो तो दांत दिए ही क्यों, दांत खाने के लिए तो खाना कर दो। तो ठाकुर जी के यहां प्रबंध है, सब प्रबंध है। आप इसी में रात दिन लगे खाने उसके लिए आपका जन्म हुआ है, आप खाने कमाने में लगे रात दिन, वो तो आपको मिलेगा, सबको मिलता है और मिलेगा। इसका अर्थ नहीं आप निथल्ले होकर आलसी होकर बैठ जाए, आलसी होना मनुष्य का अपराध है, कभी आलसी नहीं होता, काम करना है। तस्मात अशक्त सततं कार्यं कर, आसक्ति रहित तो होकर काम करो, मशीन की तरह करो, तत्परता से करो। पर निर्वाह के लिए नहीं, संग्रह के लिए नहीं, भोग भोगने के लिए, भोग भोगना संग्रह करना नहीं, निर्वाह के लिए भी नहीं करना। निर्वाह तो पहले प्रबंध है, प्राण पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले शरीर को। तो निर्वाह के लिए तो है, काम धंधा करो बड़े उत्साह से, किस वास्ते करे, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यद करो सी यदस ना सी, यद जो करते हैं तत्पुरुष मदर्पण, भगवान के अर्पण करो, भगवान के लिए करो और मस्त रहो हरदम। तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, मुक्ति हो जाएगी। मोह तो जो काम करने वही करो, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके लोक हित के लिए कर्तव्य मात्र का आचरण करो, कल्याण हो जाएगा। तो संदेह अब इसमें शंका और पूछ, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात, कितनी पीने की बात। प्रभु सत्य चेतन आत्मायानंद घन आनंद घन प्रभु घन प्रभु सत्य चेतन आत्मायानंद घन आनंद घन घन प्रभु सत्य चेतन आत्मायानंद घन आनंद घन घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन प्रभु घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन घन आनंद 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 घन घन प्रभु सत्य चेतन आत्मायानंद घन आनंद घन प्रभु सत्य आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य घन प्रभु सत्य चेतन घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद आनंद घन प्रभु सत्य चेतन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मानंद रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय।